नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा, भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है जिससे स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक की। भारत ने तिमोर लेस्ट को रेबीज के से निपटने के लिए सहायता के लिए रेबीज के टीकों की 10,000 खुराक भेजी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। मौसम विभाग का आज राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में बृहस्पतिवार को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता आज रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने दरभंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए वायदा किया है कि एनडीए राज्य के हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएगा।
हम बिहार के अंदर हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएंगे, हर जिले में एक नई फैक्ट्री और बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे और यूपी और तमिलनाडु की तरह बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करना।
दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि महागठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन युवाओं, महिलाओं, महंगाई और नौकरियों की बात कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 वर्षों में उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि उनकी सरकार बनती है तो पैक्स और व्यापार मंडलों के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने से किसानों को धान की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपए की बोनस की राशि दी जाएगी और गेहूं में भी खरीद पर MSP के अलावा 400 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस की राशि दी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त सीट मिलेगी। उन्होंने ये बात आज बिहार में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महिलाओं से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की जीत पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।
मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। ये SIR का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था। नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। आज से शुरू हुआ SIR का गणना चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूट जाए। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपात्र नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है और आशा करता है कि इससे एक स्थायी तथा सतत समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने नई दिल्ली में इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत और इसराइल आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का आतंकवाद के सभी प्रारूपों और गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने की वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना आवश्यक है। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि भारत तथा इसराइल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश कठिन समय में भी विश्वासपूर्ण संबंधों के साथ खड़े हैं। भारत ने तिमोर लेस्ट को रेबीज के प्रकोप से निपटने में सहायता के लिए रेबीज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन की 2000 शीशियां और रेबीज टीकों की 10,000 खुराक भेजी है। भारत ने अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य साझेदारी के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तिमोर लेस्ट में मार्च 2024 में मनुष्यों में पहला रेबीज का मामला सामने आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा केवल आत्मनिर्भरता का साधन नहीं बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास की प्रेरणा भी है। वे आज उत्तराखंड के नैनीताल में कमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा का उपयोग वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा बुद्धि कौशल और नैतिक मूल्यों का सशक्त बनाती है।
आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, जहां गरीबों सहित प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका के लिए विटामिन तथा खनिजों की युक्त पोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजी है। ये प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठन है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात की यह पहल पोषण अभियान के तहत सरकार के कुपोषण मुक्त भारत अभियान के अनुरूप है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में गरज के साथ छींटे पड़ने तथा तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दोपहर तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 पर दर्ज किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित दरों से देशभर के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत मिल रही है। आज हम सुनेंगे कि कैसे अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों से केरल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में कटौती करके इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को किफायती बनाया है और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ाया है। केरल का काजू प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत है, इसमें अब 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यात इकाइयों की लागत में कमी आई है। इसी तरह वायनाड के आसपास के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ हुआ है, जिसमें इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ हुआ है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य में उत्पादों की मूल्यों में कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लग रहा है, जिससे लागत पर 6-11% की बचत हो रही है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर को बोझ को कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। समर्थ रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल में माउंट यालुंगरी पर कल सवेरे हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग लापता है। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा, भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है, जिससे स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने तिमोर लेस्ट को रेबीज से निपटने में सहायता के लिए रेबीज के टीकों की 10,000 खुराक भेजी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। मौसम विभाग का आज इस राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।